महाबंध पुस्तक चौथी लेक्चर नंबर 6। ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वैच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूणं भूतबलि प्रणीतं तं बन्धतत्त्वप्रकाशकम् महाधवल विख्यातम् महाबंधम नमामि। यह श्री भगवान भूतबलि भट्टारक प्रणीत महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जिसका दूसरा नाम है महाधवल। उसमें चौथी पुस्तक में तीसरा अनुभाग बंध अधिकार चल रहा है। अभी हम आए हैं पृष्ठ संख्या 29 पर। यहाँ भी काल प्ररूपणा चल रही है। देखो, ये अनुभाग बंध की बात यहाँ चल रही है। जैसे हमने स्थिति बंध में बातें देखी थी, वैसे ही अनुभाग बंध में जो अन्य अन्य प्ररूपणा हुई थी, जैसे संज्ञा प्ररूपणा में घाती कर्म अघाती कर्म, घाती में भी सर्वघाती देशघाती, फिर उसमें स्थान संज्ञा में चतुस्थानिक त्रिस्थानिक द्विस्थानिक एकस्थानिक, इस तरह से। उसके बाद सर्व नौ सर्व, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट, जघन्य अजघन्य, सादी अनादि, ध्रुव अध्रुव, इस तरह से उसकी चर्चा हुई। उसके पश्चात स्वामित्व की बात हुई, क्योंकि कर्मों का उत्कृष्ट अनुभाग कहाँ होता है और जघन्य कहाँ होता है। तो हमने देखा जो अप्रशस्त कर्म है, कौन से घाती वाले, चार घाती कर्म, उसका उत्कृष्ट अनुभाग, उसका स्वामी कौन है, तो संगी पंचेन्द्रिय पर्याप्त मिथ्या दृष्टि जी उसका स्वामी है। वेदिनी नाम और गोत्र का उत्कृष्ट अनुभाग का स्वामी कौन है, तो उसको तो प्रशस्त प्रकृति का लेना, क्योंकि मूल प्रकृतियों में हम घटा रहे, साता या असाता ऐसा डिफरेंस नहीं करना है। तो दसवें के अंत में उसका उत्कृष्ट बंध होगा अनुभाग, अंतिम समय में, वहां एक एक समय में एक एक बंध। उसके बाद आयु का कहाँ था उत्कृष्ट बंध, अप्रमत्तम, अप्रमत्तम देवायु बांधने वाला, क्योंकि वो शुभ आयु का वो उसका अनंत गुण था, तो अप्रमत्त गुण स्थान में देवायु का बंध करने वाला 33 सागर का, उसका उत्कृष्ट अनुभव का बंध होता। हो गए ना सभी, चार ये चार ये, इसका बात मूल प्रकृति की बात करो। फिर उसी को हमने मार्गणाओं में भी देखा। फिर जघन्य अनुभाग की चर्चा चली, जघन्य अनुभाग कहाँ होता है, तो घाती कर्मों का जघन्य अनुभाग बंध कब होता है, अब उल्टा सोचना, क्षपक प्रयोग, क्षपक अंतिम समय में उसका उत्कृष्ट सॉरी जघन्य अनुभाग होगा। वेदिनी नाम गोत्र का जघन्य अनुभाग कब होगा, हाँ गोत्र का हम अलग बात करेंगे, वेदिनी का पहले सोचते हैं। देखो अगर हम क्षपक को लेंगे तो साता का उत्कृष्ट, और अगर मिथ्या दृष्टि को लेंगे संकलेश वाला तो असाता का उत्कृष्ट है। हमें तो जघन्य चाहिए वेदिनी का, तो मध्यम परिणाम में होते, तो उसको कहते हैं परिवर्तमान मध्यम परिणाम। फिर लौट कर उसी परिणाम को आता है, उसको परिवर्तमान कहते हैं। तो वेदिनी और नाम में तो परिवर्तमान मध्यम में उसका जघन्य बंध होता है, ऐसा समय दृष्टि मिथ्या दृष्टि कोई भी। गोत्र में हमने देखा तक कहाँ होता है जघन्य अनुभाग, सातवें नरक का नारकी, सम्यक्त्व के सन्मुख वाला, अनिवृत्तिकरण के अंत समय में अंतिम अनुभाग बंध, जघन्य अनुभाग बंध में अवस्थित ऐसा जीव वहां लिया है। ये तो हमने ओग में देखा था। आयु का भी जघन्य कब लिया, तो अपर्याप्त जीवन की बात की थी, उसके लिए अपर्याप्त निवृत्ति से निवर्तमान ऐसी बात की थी। तो तो अभी हम मार्गणाओं में वो स्वामित्व की बात है, अब काल की बात है। काल काल में क्या लेना कि लगातार उत्कृष्ट कितने समय तक होता है और लगातार जघन्य कितने समय तक होता है, उसको काल कहेंगे। नहीं ठीक है, आवाज गए। तो अभी हम काल की बात देख रहे थे। तो कोई भी उत्कृष्ट संकलेश वाला गाति कर्मों का उत्कृष्ट बंध हमने देखा था, संगी पंजनी मिथ्या दृष्टि को संकलेश परिणाम में, तो एक समय तक हो सकता है, मैक्सिमम दो ही समय तक होगा। लगातार इतना उत्कृष्ट संकलेश परिणाम दो समय तक हो सकता है, इसलिए जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय हमने देखा। नहीं सबके चारों गति देखो, काल की निकालना प्रवृत्ति 26 से शुरू हुई थी। तो उसमें हमने क्या देखा था, देखो दूसरी लाइन उसके, ओग से चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का कितना काल है, तो जघन्य एक समय और उत्कृष्ट दो समय। जो उत्कृष्ट नहीं है वो अनुत्कृष्ट है, तो अनुत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य काल एक समय है, क्योंकि उत्कृष्ट करके अनुत्कृष्ट हुआ फिर उत्कृष्ट हुआ, तो एक समय के लिए अनुत्कृष्ट हुआ। और उत्कृष्ट काल अनंत काल है, यानी कोई एक इंद्रिय में गया तो उसने उत्कृष्ट अनुभाग बांधा ही नहीं, जब पंच इंद्रिय में आएगा बांधेगा तब उसका होगा, इसलिए अनुत्कृष्ट में रहा, उत्कृष्ट किया नहीं बीच में, वो अनंत काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन के बराबर होता है। वेदनीय नाम गोत्र कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग बंध का, यहाँ तो जघन्य भी और उत्कृष्ट भी एक समय लिया, क्योंकि वो दसवें गुण स्थान का अंतिम एक समय लेना है, वहां दो समय नहीं लेने। अभी अनुत्कृष्ट का क्या, जब वेदनीय का अनुत्कृष्ट, जो उत्कृष्ट नहीं तब तक था पूरा वो अनुत्कृष्ट ही था अनादि से, तो वो तीन प्रकार से बताया, अनादि अनंत अभव्यों में, उत्कृष्ट तो क्षपक में होगा लास्ट में, या अनादि शांत यानी रुक गया। रुक गया कब होगा, उपशम श्रेणी चढ़ते समय दसवें के अंत में अनुत्कृष्ट होकर रुका, फिर नहीं हुआ फिर अनुत्कृष्ट हुआ, वो भी हो सकता है, या क्षपक श्रेणी में भी होगा अनादि शांत। सादि शांत कब होगा, कि अनुत्कृष्ट श्रेणी से उतरते समय अनुत्कृष्ट ही चालू हो गया और फिर दोबारा श्रेणी चढ़ी और फिर दोबारा, तो उसको सादि शांत जघन्य अंतर्मूर्त भी होगा और अधिक से अधिक अर्धपुद्गल परावर्तन अनुत्कृष्ट का। अब आयु कर्म में उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल दो समय, जैसे अन्य कर्मों के लिए लेते वैसा ही लेना है। अनुत्कृष्ट के लिए तो एक समय से लेकर अंतर्मूर्त, क्योंकि आयु अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं बनती। अब ये उसी का हमने विशेषार्थ पढ़ा था। फिर 27 पेज से मार्गणाओं में बात शुरू हुई थी। नारकियों में देखा था उत्कृष्ट अनुभाग सातों ही कर्मों का, सात में किसको छोड़ा, आयु। उत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल दो समय बताया, और अनुत्कृष्ट का जघन्य एक समय और उत्कृष्ट काल 33 अगर, यानी उसने उत्कृष्ट अनुभाग बांधा ही नहीं कभी, इस तरह से हो सकता। तिरियंचों में सात कर्मों का उत्कृष्ट भंग नारकियों के समान है, यानी एक या दो समय, परंतु अनुत्कृष्ट का कितना होगा, अनंत काल, क्योंकि एक इंद्रिय में जाएगा तिरियंचों में रहेगा, उसका अनुत्कृष्ट चलता रहेगा। उसके बाद अभव्य और असंग के लिए ऐसा ही बताया। अब पंचेंद्रिय तिरियंच त्रिक में दो तीन लाइन नीचे, सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का काल सामान्य तिरियंच एक या दो समय, अनुत्कृष्ट का जघन्य काल एक समय। अब उत्कृष्ट के लिए उसकी काय स्थिति लेना, उत्कृष्ट काल के लिए अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल, पूर्वकोटि पृथक को अधिक तीन पल। अभी पंचेंद्रिय तिरियंच अपर्याप्त कौन है, आठों कर्मों का ले है उसमें एक या दो समय, और अनुत्कृष्ट का एक समय और अंतर्मुख। इसी प्रकार सब अपर्याप्त वगैरह वगैरह। मनुष्य त्रिग में वेदिनी नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंद का काल ओक के समान, क्योंकि दसवें के अंत में शपक में एक समय का लिया, बाकी तो जैसे हमने पंचेंद्रियों में देखा था तीरेंचों में ऐसा ही होगा। देवों में नारकियों के समान बताया था, वहां भी अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल तैतीस सागर लिया था। उसके बाद हमने एकेंद्रिय में देखा, हर जगह उत्कृष्ट का एक या दो समय लिया। अनुत्कृष्ट में हमें या तो उसकी काय स्थिति संरचना है, या अभी जैसे एकेंद्रियों की बात करते हैं, जब सूक्ष्म में चला गया तो अनुत्कृष्ट ही बांधता रहा, क्योंकि उत्कृष्ट का बंध तो बादर जीव करेंगे, इसलिए अनुत्कृष्ट का तो असंख्यात लोक काल वहां बताया था। ये अलग अलग कायिकों में वगैरह हमने देखा था, बादर में तो अंगुल का असंख्यात भाग लिया, बादर एकेंद्रिय पर्याप्तों में संख्यात हजार वर्ष लिए, कायिकों में अलग अलग कायिक लेंगे, पृथ्वी कायिक वगैरह बादर के, तो कर्म स्थिति प्रमाण लिया, अभी उसका विशेषार्थ भी हमने पढ़ लिया। 29 पेज पर हम आए हैं द्विंद्रिय तीनद्रिय चतुरिंद्रियों में भी, उत्कृष्ट का तो एक या दो समय होता है, अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है। यहां तक अपना पढ़ा था, यहां से आगे यहां शुरू करते हैं। पंचेंद्रिय द्विक यानी पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्त, त्रसद द्विक यानी त्रसद त्रस पर्याप्त में चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का काल ओह के समान है, यानी एक या दो समय। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का एक जघन्य काल एक समय है, और उत्कृष्ट काल क्रम से पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक 1000 सागर यानी पंचेंद्रिय के लिए, और पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक 2000 सागर त्रस के लिए, सामान्य त्रस के लिए। परंतु अगर पंचेंद्रिय पर्याप्त कहना है तो 100 सागर पृथक, और त्रस पर्याप्त इतना ही कहना है तो 2000 सागर, ये उसकी काय स्थिति लेना। पंचेंद्रिय लिखा ना, किंतु पर्याप्त को में नीचे की लाइन में लिखा 100 सागर पृथक, दोनों के पर्याप्त अलग अलग बताए, और 2000 सागर। पहले जो उन्होंने पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक 1000 सागर लिखे थे, वहां पंचेंद्रिय इन जनरल लिए, और पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक 2000 सागर लिए वो त्रस इन जनरल लिए, यानी सामान्य त्रस के लिए बताया। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का काल ओह के समान है, क्योंकि पंचेंद्रिय त्रस में वही घटित होगा, उत्कृष्ट एक ही समय के लिए होता है, शपक दसवें गुण स्थान में। हाँ, कौन सा नहीं समझा?
सेकंड लाइन में जो बताया
है, पहले पंचेंद्रिय के बताया, फिर त्रस के लिए, सामान्य पंचेंद्रिय सामान्य त्रस, पूर्व कोटि प्रदत्त अधिक 2000 सागर सामान्य त्रस के लिए। वो पर्याप्त में पंचेंद्रिय पर्याप्त और वो त्रस पर्याप्त। द्विंद्रिय आदि सब आते हैं ना, तो त्रस की उत्कृष्ट काय स्थिति पृथक पूर्व कोटि अधिक 2000 सागर, और यहाँ पृथक कोटि पूर्व अधिक 1000 सागर होती है पंचेंद्रियों में, यानी वो कभी पंचेंद्रियों में जाएगा कभी विकलेंद्रियों में जाएगा, इस तरह से रहेगा। अकेले विकेंद्रिय में रहेगा तो संख्या हजार वर्ष, परंतु त्रस की अगर लेते हैं उसमें विकलेंद्रिय की भी हुई पंचेंद्रिय की भी हुई, कभी इसमें कभी उसमें चला जाए तो साधिक 2000 सागर। आगे बढ़े अभी, वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का काल ओक के समान, यानी एक समय, उत्तर सामान्य किंतु पर्याप्तकों में, कौन से पर्याप्त? पंचेंद्रिय पर्याप्तों में, हाँ, और 2000 सागर है वो त्रस पर्याप्त है। देखो ऊपर क्या लिखा, पंचेंद्रिय द्विक और त्रस द्विक, उसमें से सामान्य पहले लिया दोनों के, फिर दोनों के पर्याप्त लिए।
और
हाँ, त्रस पर्याप्त के लिए 2000 सागर, त्रस पर्याप्त, मात्र त्रस पर्याप्त। वो तो स्पष्ट शब्दों में वहां पर भी है धौला के सातवें भाग में, परंतु उसका अर्थ गलत लगाते हैं। मैं जो फोन आए थे किसी विद्वान का, तो उसमें क्या कहते थे कि ये तो पृथक तो पूर्व कोटिया दिखे ना, तो वो मात्र मनुष्य तिरियंचों के भव लेना और 2000 सागर पूरे के पूरे देवनारकी में लेना। तो केवल 2000 सागर हो गए तो वहां मनुष्य तिरियंचों को कहाँ रखना? ये क्या है, अपने मन करणानियो के जो कुछ है वो अपने मन से नहीं उसके लगा सकते। जैसे हमने देखे विकलेन्द्रिय की उत्कृष्ट काय स्थिति तो संख्यात हजार वर्ष, और पंचेन्द्रियों की उत्कृष्ट अभी हमने देखे थे पूर्व कोटि पृथकता दी कैसे 1000 सागर, दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? वो 1000 सागर और कुछ पूर्व कोटि हो गए ना, संख्यात हजार वर्ष उसी में मिला देंगे, तो इस तरह से उसकी एडिशन नहीं होती है। जैसे हमने देखा था सूक्ष्म पर्याप्तों में अकेले रहिए तो अंतर्मुख, मात्र सूक्ष्म अपर्याप्त में रहे तो अंतर्मुख, उससे अधिक नहीं, तो दोनों को मिलाकर दो बड़ा अंतर्मुख या बड़ा ऐसा नहीं होता है, असंख्यात लोक प्रमाण काल होता है। वहां अपनी बुद्धि नहीं चलती है। हाँ, ये क्षपक वाले जो है अन्यत्र दो समय, कहीं भी उत्कृष्ट परिणाम जो होता है वो दो समय तक हो सकता है, घाती कर्मों के लिए या अन्यत्र भी हमने देखा। हाँ, क्योंकि अन्य मार्गणाओं में कैसे हमने देखा था दो समय, आठों कर्मों के लिए दो समय बताया था, जैसे हमने भी पंचेंद्रिय तिरेंच पर्याप्त की बात की थी, आठों कर्मों के लिए दो समय लिए थे, अभी पढ़ा ना हमने। यानी जहाँ वेदिनी नाम गोत्र का उत्कृष्ट बंध दसवें स्थान के अंत में होगा वहाँ एक समय है, जिन मार्गणाओं में श्रेणी की बात नहीं आती है वहाँ दो समय घटित होते हैं। विशेषार्थ ये पढ़ा कि नहीं अनुत्कृष्ट? नहीं, फिर से पढ़ते हैं। वेदिनी नाम गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का काल ओके समय ने एक समय, और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल अंतर्मूर्त है। ये जघन्य काल मंजू बहन कहाँ कैसे होगा अंतर्मूर्त? हाँ, प्रेरणाबेन बताए, उपशम श्रेणी उतरा, अनुत्कृष्ट शुरू किया, फिर चढ़ा, तो फिर बंध रुक गया, तो अंतर्मूर्त होगा। और उत्कृष्ट काल ज्ञानावरण के समान है, हाँ, अर्धपुद्गल प्रारंभ। क्या क्या ओहो हो, बराबर बराबर बराबर, मैंने भूल कर दी, मैंने ओके ज्ञानावरण के समान नहीं। अभी हमने जो ऊपर काय स्थिति देखी उतना मैं भी बह गई। हाँ, ये पृथक पूर्व कोटि पृथक वगैरह अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल, क्योंकि वो मार्गणा में भूल गए, मैंने ओग में घटित किया। ये पंचेंद्रिय द्वीप के अंतिम भाव में फिर उसने किया, साधी शांत घटित करना है ना, ये ज्ञानावरण के समान नहीं, अभी पंचेन्द्रियद्विक में ज्ञानावरण का क्या कहा, अभी हमने जिस पर चर्चा की थी अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल, अभी जो ऊपर लिखा अभी 87 नंबर के ही पॉइंट में पूर्व कोटि पृथक्व अधिक 1000 सागर, पूर्व कोटि पृथक्व अधिक 2000 सागर, पर्याप्त को में 100 सागर पृथक्व और 2000 सागर, यानी ये अभी जो ऊपर की काय स्थिति, यानी काय स्थिति प्रमाण लेना कुछ कम। ज्ञानावरण नियम उप में चले गए विशेषार्थ, पंचेन्द्रियों की उत्कृष्ट काय स्थिति पूर्व कोटि पृथक्व अधिक 1000 सागर, पंचेन्द्रिय पर्याप्तकों की 100 सागर पृथक्व, नीचे हमने पढ़ा ही नहीं था, त्रसकायिक की पूर्व कोटि पृथक्व अधिक 2000 सागर और त्रसकायिक पर्याप्तकों की 2000 सागर है। इसी से यहाँ इनमें चार घाती कर्मों के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है। इनमें वेदिनी नाम और गोत्र कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग बंधक क्षपक श्रेणी में होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभाग बंधक का उत्कृष्ट काल ओग के समान कहा है, शेष कथन सुगम है। पांच मनोयोगी और पांच वचन योगी जीवों में सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का काल ओघ के समान है, एक और दो समय, और वो वेदनी वगैरह का क्षपक में लेना एक समय, चार तीन सात हो गए ना। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है, दो उत्कृष्ट के बीच में, और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। मन जो अंतर्मूर्त क्यों कहा, अभी अभी तो हमने कितना पृथक कोटि वगैरह वगैरह कुछ देखा था। हाँ उपशम श्रेणी का क्या है, नहीं आप क्या कहते हैं, बहुत अच्छा योग पर हमारी मार्गणा ही योग की है, वो अंतर्मूर्त की है। योग का परिवर्तन, योग का काली अंतर्मूर्त है, उसी में घटित होगा अनुत्कृष्ट का। काय योगी जीवों में चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का काल ओग के समान है। उत्कृष्ट तो एक और दो समय होता है, अनुत्कृष्ट में जगन्य एक समय और उत्कृष्ट अभी बताओ अनंत असंख्यात पुद्गल पर आवृत, उसके काय योग में ही रहा ना कायम, वही तो असंख्यात पुद्गल पर आवृत, यानी किसी ने अनुत्कृष्ट का बंध किया एक इंद्रिय में चला गया और लगातार अनुत्कृष्ट ही बांधता रहा, मैंने संगी पंचनीय में उसने उत्कृष्ट किया था, उत्कृष्ट के बाद अनुत्कृष्ट शुरू किया, फिर कभी मरकर वो एक इंद्रिय में चला गया और अनुत्कृष्ट ही करता रहा, वहां से निकलेगा संगी पंचेन्द्रिय होकर जब उत्कृष्ट बांधेगा तब तक अनुत्कृष्ट का लगातार चलता।
उत्कृष्ट में एक या दो समय,
हाँ उत्कृष्ट दो समय, एक समय दो समय, वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का काल ओग के समान है, यानी एक समय है, तथा इन सबके सबके ने चार घाती के भी और वेदनीय नाम गोत्र के भी अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है, उत्कृष्ट अनंत काल है, जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। ये बात ख्याल में आई, औदारिक कायोगी जीवों में अभी लिमिटेशन आ गई, औदारिक कायोगी बताएं, चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाव बंद का काल ओघ के समान है, एक या दो समय। अनुत्कृष्ट अनुभाव बंद का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम 22,000 वर्ष है। पृथ्वी का एक में एक भो लेना ना, क्योंकि लगातार वो नहीं ले सकते, बीच में कारमाण होगा या उदारिक मिश्र होगा। यानी कंटिन्यूस एक ही औदारिक काल योग में रहने का उत्कृष्ट काल है, कुछ कम 22,000 वर्ष। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का काल ओघ के समान है, एक समय, क्योंकि औदारिक काल योग में घटित होता है ना वो। और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का काल ज्ञानावरण के समान है, कुछ कम 22,000 वर्ष। औदारिक में लेना है। औदारिक मिश्र का योगी जीवों में सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। हमने देखा था जो अन्य अनंतर समय में पर्याप्त होगा उसको लिया था, इसलिए एक समय लिया। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। ये अंतर्मुहूर्त क्यों कहा? एक भाव की अपेक्षा भी और अनेक भावों की अपेक्षा भी कंटिन्यूस लब्धि पर्याप्त रहे तो भी। इसी प्रकार वैकृत मिश्र का योगी और आहारक मिश्र का योगी जीवों के जानना चाहिए। इतनी विशेषता है आहारक मिश्र का योगी जीवों में आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल एक समय है। जैसे आहारक मिश्र में भी वही लेना है, क्योंकि अनंतर समय में उसको पर्याप्ति पूरी हुई।
आयु कर्म की बात की,
आयु कर्म के लिए अन्य कर्मों के दो समय तो घटित हो सकते हैं।
नहीं, जो आहारक मिश्र का आयु की बात है ना,
हाँ,
तो वो भी पर्याप्त पूरी होने के पहले समय में,
इसीलिए एक समय लिया ना, इसीलिए तो एक समय लिया जहाँ मैं एग्जिमिंग विषय दी है।
अच्छा, आयु कर्मों का अलग से बताए,
बराबर है अन्य कर्मों में। अच्छा, पहले तो इसी प्रकार लिखा, बराबर। अब वैकृत मिश्र में तो आयु का बंधन नहीं होता है, वैकृत मिश्र में आयु का बंधन मैं वैकृत मिश्र की बात पूछी। आहारक मिश्र में आयु का बताने का प्रयोजन क्या है? क्योंकि वैकृत मिश्र में आयु नहीं बनती, आहारक मिश्र में बनती है, इसलिए उसको अलग से बताया। कौन से अन्य मार्गणों में? ओग में तो दो समय भी घटित किया था। हाँ, यहाँ अंतर है। और औदारिक मिश्र में भी उन्होंने सात कर्मों का एक समय लिया था, वहाँ
हाँ,
वहाँ आयु के लिए तो बीच में ही बंधेगी ना उसके लिए। विशेषात में पड़ेंगे देखो, क्योंकि आहारक मिश्र में आयु बंधेगी वो कंटिन्यूस आगे भी बन सकती है। औदारिक मिश्र वाले की तो आयु तो पूर्व में ही बंधेगी, लास्ट समय में तो बंधेगी नहीं। औदारिक मिश्र में आयु बांधने वाला जीव है लब्धि पर्याप्त, मरण के समय तो नहीं बांधेगा, तो इन बिटवीन बांधेगा। ख्याल में इन बात नहीं समझे? टूथर्ण आयु पूरी हुई, वन थर्ड बाकी तभी बांधेगा और अंतर मुहूर्त तक बांधेगा, तो उसके तो दो समय घटित हो गए ना वहां पर। नहीं समझे, पंचेंद्रिय लब्धियों पर्याप्त में आयु के लिए भी दो समय लिए थे, वैसे औदारिक मिश्र में भी आयु के लिए दो समय घटित हो गए। मैक्सिमम, परंतु आहारक मिश्र में वो नहीं घटित होगा। आहारक मिश्र में आयु बनती तो बनेगी, वो आगे आहारक कायोग में भी बनती रहेगी आगे चलकर, परंतु मिश्र में उसका अंतिम एक ही समय घटित होगा। अभी आगे क्या लिखे हम पढ़ेंगे, देखो अभी का वाक्य पूरा करते हैं। वैकृत मिश्र आहारक मिश्र का ऐसा ही समझना विशेषता के आहारक मिश्र में आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभव मंद का जघन्य काल एक समय है, वो नेक्स्ट समय में पर्याप्ति पूरी करेगा ऐसा लेना। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि तो इसका क्या
दो समय के जो संचालित है और उसमें अनुत्कृष्ट का एक समय कैसे घटित होगा, आगत मिश्रा में आयु का बंद एक ही समय के लिए जीवित है।
इतनी विशेषता देखो, अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद का जघन्य काल एक समय है, वो तभी आयु बंद शुरू किया, अनुत्कृष्ट ही शुरू किया हो सकता है। मिश्र में अभी एक ही समय के लिए आयु बांधी और आगे आहार का योगी हो गया, या उसने मिश्र में लगातार अंतर्मूर्त तक आयु बांधी, ऐसे भी हो सकता है। विशेषात पढ़ेंगे, देखो औदारिक मिश्र कायोगी जीवों में पर्याप्त होने के एक समय पूर्व उत्कृष्ट अनुभाग बंध संभव है, अतः इनमें सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा। इसलिए अनुत्कृष्ट का भी जघन्य अंतर्मूर्त ही होगा, क्योंकि अंतिम समय में उत्कृष्ट होता है तो उसके पहले सारा अनुत्कृष्ट ही होगा, तो भी अंतर्मूर्त ही होगा, उत्कृष्ट किया ही नहीं तो भी अंतर्मूर्त ही होगा। यही नियम वैकृत मिश्र का योगी और आहारक मिश्र का योगी जीवन के जानना चाहिए। इसलिए इनमें भी सात कर्मों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का काल औदारिक मिश्र का योगी जीवन के समान जानना चाहिए। औदारिक मिश्र का योग में लब्धि पर्याप्त लेना, संगी पंचेंद्रिय उत्कृष्ट अनुभाग में लेना उसको ना, और यदि वेदनीय का कहां लेंगे,
वो भी अंतिम समय है।
यही नियम वैकृत मिश्र कायोगी और आहारक मिश्र कायोगी जीवों के जानना चाहिए। इसलिए इनमें भी सात कर्मों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का काल औदारिक मिश्र कायोगी जीवों के समान कहा है, मात्र आहारक मिश्र कायोगी जीवों में आयु कर्म के काल में कुछ विशेषता है। बात यह है कि इनमें आयु कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग बंध शरीर पर्याप्ति प्राप्त होने के एक समय पहले संभव है, तथा इसी प्रकार शरीर पर्याप्ति के प्राप्त होने के एक समय पहले से आयु बंध भी संभव है, यानी वहीं पर शुरुआत हुई ये भी संभव है। इस रेंज में आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा है, शेष कथन सुगम है। ना ना ना, एक ही समय के लिए अनुत्कृष्ट ही बंद किया,
उसमें उत्कृष्ट होगा इससे नहीं है,
जरूरी नहीं ना। वैकृत का योगी और आहार का योगी, आहारक चाहिए ना, वैकृत और आहार का योगी जीवों में आठ कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। कोई भी परिणाम जो है उत्कृष्ट बंद करने वाला अधिक से अधिक दो समय तक ही रहेगा, उससे ज्यादा कंटिन्यूस नहीं रहेगा, इसलिए दो समय लिया। अभी उसमें आठों ही कर्मों का ले लिया है, आयु में भी होगा, उसमें यही रूल है ना, उत्कृष्ट अनुभाग बंधक के कारणभूत परिणाम लगातार दो समय तक हो सकते हैं। अब अनुत्कृष्ट अनुभाग बंधक का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि ये काय योग अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं रहेगा। औदारिक काय योग तो हम ठीक है पृथ्वी कायिक में घटित किया था लंबा, यहाँ आहारक काय योग और वैकृत काय योग अंतर्मूर्त रहेगा। कार्मण कायोगी जीव में यहाँ तो सात ही कर्म लेना, आयु का तो बंध होगा नहीं, सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन समय है। तो एक इंद्रिय में तीन समय लगते हैं कार्मण का युग में, उसकी बात बताई। एक समय लिया उत्कृष्ट के लिए,
तो दो समय के लिए वहाँ पे उत्कृष्ट नहीं होगा।
हाँ,
जो इनकी बात उत्कृष्ट,
देखो विशेषार्थ कार्मण का युग का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल तीन समय है, उसमें भी सात कर्मों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध अंतिम समय में होता है। क्योंकि चार घाती कर्मों के योग्य उत्कृष्ट संकलेश परिणाम और वेदिनी नाम गोत्र के योग्य उत्कृष्ट सर्वविशुद्ध परिणाम वही संभव है, वही यानी वहां पर ही
चार कर्मों का और तीन कर्मों का अलग।
हाँ, घाती के लिए संकलेश लिया और इसके लिए विशुद्ध लिया, संकलेश हो या विशुद्ध हो अंतिम समय में उसको ज्यादा होता। अतः इनके सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल तीन समय कहा है। तो ये एक समय घटित हुआ ना अभी अंतिम समय में, शेष कथन सुगम है। अब योग मार्गणा हो गई, वेद मार्गणा में स्त्री वेदी जीवों में चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का काल ओघ के समान है, एक या दो समय। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है, उत्कृष्ट काल सौ पल्ल्य पृथक्त्व प्रमाण, ये स्त्री वेद में रहने का उत्कृष्ट काल है, उसकी काय स्थिति कहेंगे हम उसको। वेदिनी नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, स्त्रीवेद का अंतिम समय लिया। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का काल ज्ञानावरण के समय, यानी एक या दो समय और सौ साल सौ पल्ल्य पृथक्त्व, स्त्री वेद के अंतिम समय में लिया क्षपक को अनुभाग। हाँ, उसमें भी एक ही समय के लिए अनुभाग होगा, जैसे दसवें में वो तो स्थिति बंद होता है अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त, यहाँ अनुभाग बंद में एक ही समय लिया। उत्कृष्ट अनुभाग बंद, अच्छा नहीं, वेदिनी नाम गोत्र का तो उत्कृष्ट अनुभाग तो चढ़ते समय होगा ना,
अंतिम समय में होगा ना।
हाँ, क्षपक स्त्रीवेद के अंतिम समय में लेना, अनुत्कृष्ट की नहीं, उत्कृष्ट की बात अभी चल रही है अपनी।
नहीं अंतर्भूत के लिए होगा तभी एक समय के लिए उत्कृष्ट करके मर गया पुरुष।
उत्कृष्ट एक समय करके मर गया। अच्छा उत्कृष्ट काल भी एक समय है तो दो समय कहते ना, यानी वहां पर भी एक समय के लिए उत्कृष्ट होगा स्त्री वेद के रहते हुए भी। ये तो घटित होता है। आगे पढ़ेंगे तो ख्याल आएगा। देखो अनुत्कृष्ट का बंध का अनुभाव बंध का काल ज्ञानावरण के समान है। ज्ञानावरण के समान यानी क्या है, एक समय से लेकर सौ पल्ले पृथक।
सूक्ष्म पुष्टि होती है उसके पश्चात ही अनुसमय होता है।
क्या क्या क्या
सूक्ष्म पुष्टि के पश्चात ही अनुसमय वर्तना होती है बंध की अपेक्षा।
क्या सूक्ष्म पुष्टि सभी कर्मों में होती है? नहीं 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 मैं पूछ रही हूँ शपक में क्या होता है। अपगत वेद होने के पश्चात बारह संग्रह पुष्टि होती है ना, अपगत वेद होने के पश्चात।
तो उसके पहले
ये स्त्री वेदी है ना,
तो ये उसके पहले भी अंतर्गुण का समान बंध भी होगा।
स्थिति का होता है अनुभव का अपेक्षा। अनुभव बंधापसरण कभी नहीं कहा, स्थिति बंधापसरण आता है उसमें वो द्विस्थानी आता है वैसे वैसे उसमें उसका कथन है। परिणाम अलग अलग है ना, प्रति समय परिणाम अलग है इसलिए एक समय लिया, यानी एक ही परिणाम दो समय तक नहीं रहेगा इस अपेक्षा से। स्थिति के वही उसकी उसी भेद के लिए अन्य अन्य परिणाम कारणभूत हो सकते हैं। तो अंतर्मूर्त स्थिति उतनी की उतनी बंधेगी, भले परिणाम विशुद्ध 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 हो रहा है तो भी, परंतु अनुभाग बंध अलग अलग होते जाएगा। यही तो घटित होता है ना इसमें से। जब जब हमने वो अनिवृत्तिकरण अपूर्वकरण की बात देखी तो स्थिति बंधापसरण आता है वहां, वो जो अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में होता है
अनुभाग प्रति समय का
विशुद्धि बढ़ती है। तो प्रति समय अनुभाग का बंध अलग अलग होगा। हम कहते हैं ना प्रशस्त प्रकृति उनका अनंत गुणा बढ़ता हुआ अनुभाग बंध इसका घटता हुआ नहीं। प्रति समय कहते हैं ना, क्या निकाल के देखना है? हाँ देखो देखो कोई भी ले दो, लब्धिसार भी दे दो चले। हमें अधकरण अपूर्वकरण के परिणामों की बात है ना। कहीं भी शपक ले लो या अनिवृत्तिकरण में देखते हैं। पूर्व स्वाधक तो बाद में होते हैं ना, पहले तो अभी स्त्री वेद का है ना। अश्वकर्म वगैरह बाद में होते ना। हाँ अपने काम में स्त्री वेद का संक्रामक होगा। अनुभाग बंध की बात ही नहीं, वो पहले ही बता चुके हैं। शुरुआत में अधकरण में ही देखना पड़ेगा। हाँ अधकरण में हो सकते हैं, परंतु वहाँ क्या क्या होता है एक एक जीव की अपेक्षा हम देखेंगे ना। पहले अध प्रवृत्त करण में अगुणश्रेणी गुण संग्रहण स्थिति कांडक वगैरह नहीं होते। जीव प्रति समय अनंत गुणा क्रम सहित विशुद्धता की वृद्धि से वर्धमान होता है। विशुद्धि प्रति समय अनंत गुणा बढ़ती है, तो प्रशस्त प्रकृतियों का प्रति समय अनंत गुणा क्रम सहित चतुस्थानक अनुभाग बंद करता है। प्रति समय अनंत गुणा बढ़ता हो और अप्रशस्त में प्रति समय अनंत वे भाग क्रम से द्विस्थानक अनुभाग बंद करता है। यानी जो स्थिति वही से ही होता है। तो अनुभाग बंद में अनंत गुणा लगाना प्रति समय, तो इसमें प्रति समय एक ही समय एक ही जो कोई एक जीव का जो है वो एक एक अनुभाग बंद होता है। ये ज्यादा क्लियर हुआ है। स्थिति बंद में तो अंतर्मूर्त में उतनी की उतनी स्थिति बनती है, भले परिणाम अनंत गुणा बढ़ता था विशुद्धि में, फिर भी उतनी की उतनी स्थिति अंतर्मूर्त तक बनती थी। अनुभाग बंद में प्रति समय अनंत गुणा का अनुभव हो, अभिघाती क्रमों का अनंत गुणा घटता हुआ बंदे। तो ये उत्कृष्ट काल एक समय लिया क्योंकि प्रति समय अनंत गुणा बढ़ता हुआ अनुभाग बंद बांध रहे थे। प्रति समय बात महत्व की, तो अंतिम समय में सबसे उत्कृष्ट होगा वेदिनी नाम गोत्र का अनुभाग बंद। स्त्री वेद के अंतिम समय में स्त्री वेदी मार्ग नाम में उत्कृष्ट होगा शपथ में। ये तो हम नहीं जानते थे वो बात नहीं, पर इतनी स्पष्टता नहीं हुई थी, है ना। अनुभाग बंद में अनंत गुणा वाले, स्थिति बंद में अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त के बाद कटौती होगी। अनुसमय अपवर्तन तो सत्ता वाला, वो सत्ता वाला घटता है अनु, हाँ वो भी सत्ता वाले कर्मों में घटते चला जाता है। अनुसमय अपवर्तन, अनुसमय ने प्रति समय, अपवर्तन ने घटना। पहले तो कांडकों में होता था, कांडक घात अभी भी अनुभाग कांडक घात तो हो गए एक एक अंतर में, परंतु दसवें में जाके वो तो अनुसमय अपवर्तन होता है, वो सत्ता वाले की बात है। अनंतवा भाग, अनंतवा भाग होता है, अनंत गुणा घटता है, घटता शब्द डालना है, अनंत गुणा घटता हुआ बनता है, गुणा करके घटता करना, यानी अनंत वे भाग प्रमाण बनता है। अधकरण की ये विशेषता है, प्रति समय विशुद्धि के अनंत गुणा बढ़ना, प्रशस्त कर्मों का अनुभाग बंद हो, प्रति समय अनंत गुणा बढ़ना, प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बंद, प्रति समय अनंत गुणा घटना। तो क्या वहाँ इतने ऊपर भी अप्रशस्त प्रकृतियां बनती है क्या? ज्ञानावरण आदि तो बंद रहे ना, घाती कर्म तो अप्रशस्त ही है, उनका बंद है वहाँ पर, तो अनंत गुणा। और स्थिति बंधा अपसरण हमने देखा, वो तो अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त, वो प्रशस्त का भी स्थिति घटती है और अप्रशस्त की भी घटती है। स्थिति तो दोनों में घटती है विशुद्धि के कारण। हाँ ये मैंने अभी बताया, यहाँ क्लैरिटी ज्यादा हुई ना, प्रश्न पूछने से तो होती है, ये तो हमेशा पूछना ही चाहिए। तो ये हो गया ना, अभी चार घाती का हुआ, वेदिनी नाम गोत्र का हुआ। इसी प्रकार पुरुष वेदी जीवों के जानना चाहिए, इतनी विशेषता है वेदिनी नाम और गोत्र कर्म के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का, जघन्य काल अंतर्मूर्त है तथा सबके अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का उत्कृष्ट काल सौ सागर पृथक्त्व प्रमाण है। ज्ञानावरण के समान है, यानी श्रीवेदी में ज्ञानावरण के समान बताया था, एक समय से लेकर सौ पल्ल पृथक को, और पुरुष वेद में परंतु वेदिनी नाम गोत्र का अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल अंतर्मुक्त दो बार श्रेणी, परंतु स्त्रीवेद में मरने की अपेक्षा लिया क्या उन्होंने एक समय अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद का जघन्य काल एक समय
मरने की अपेक्षा हुई
नहीं, घाती कर्मों में तो मरने की अपेक्षा कहाँ लगती है, वो तो कहीं पर भी होगी।
वेद पलट जाएगा मर जाएगा, पुरुष वेद दूर जाएगा।
वो बात सही है, परंतु घाती कर्मों के एक समय के लिए वो मरने की अपेक्षा नहीं लेनी है। घाती कर्मों का अनुत्कृष्ट है वो तो मिथ्या दृष्टि के होगा ना उत्कृष्ट, और बीच में एक समय के लिए अनुत्कृष्ट हुआ। घाती कर्मों के अनुत्कृष्ट के लिए एक समय तो अन्यत्र ही घटित होगा, वो श्रेणी में नहीं घटित करना, बराबर है ना। वेदिनी नाम और गोत्र के अनुत्कृष्ट के लिए
एक नाम और गोत्र का जो अंतर्भुक्त है वो दो का श्रेणी की अपेक्षा ही होगा पुरुष वेद,
यानी उतरते समय पुरुष वेद का
अनुत्कृष्ट होगा,
अनुत्कृष्ट ही बांध रहा है फिर मिट गया है ना।
वापस बंद होगा और चढ़ा वापस,
यहाँ एक समय जो लिया है स्त्री वेद में मरण की अपेक्षा। फिर से दोबारा बताती हूँ, देखो उपशम श्रेणी उतरते समय स्त्री वेद वेदिनी नाम गोत्र का उपशम श्रेणी उतरते समय स्त्री वेद का उदय शुरू हुआ, उसी समय वेदिनी नाम गोत्र का बंद हो रहा था। वो कैसा हो रहा है, अनुत्कृष्ट हो रहा है, अनुत्कृष्ट बंद किया एक समय में मर गया, पुरुष वेदी हुआ तो एक समय अनुत्कृष्ट घटित हुआ। पुरुष वेद में वो एक समय घटित नहीं होता, क्योंकि मरेगा तो भी देव में पुरुष वेदी होगा, इसलिए अंतर्मूर्त कैसे घटित करना है, श्रेणी उतरते समय पुरुष वेदी हुआ वहां जो बंद होता है वो अनुत्कृष्ट ही होता है, तो अनुत्कृष्ट बांधते बांधते फिर दोबारा श्रेणी चढ़ा तो बंद रुक गया, यानी वो पुरुष वेद उसका मिट गया, यानी वो तो अपगत वेदी हो गया, तो उसका अंतर्मूर्त घटित हुआ। अच्छा शपक में चढ़ाओ, कहीं पर भी अपगत वेदी कराओ उसको,
शपक पे
जल्दी
नहीं, पर ये उत्कृष्ट काल लेना है तो शपक नहीं लेना है, वापस
जघन्य काल
नहीं, उत्कृष्ट काल
अंतर्मूर्त की हम चर्चा कर रहे हैं,
तो शपक में लेना
है, यानी जघन्य काल अंतर्मूर्त कैसे उपशम श्रेणी उतरते समय उतरकर पुरुष वेदी हुआ अपगत वेद से, और अनुत्कृष्ट बंद करके शपक श्रेणी में अपगत वेदी हुआ। तो उसका काल अंतर्मूर्त हुआ, बराबर है ना। स्त्री वेद में ऐसा घटित नहीं हो सकता, उपशम श्रेणी पहले उतरा हाँ, इसीलिए तो जघन्य काल लिखा ना था पहली बार उपशम श्रेणी उतरा क्यों
सफल श्रेणी से उपशम श्रेणी का काल जाता है
पर हम जघन्य अंतर्मूर्त घटित कर रहे हैं उपशम श्रेणी में क्या जल्दी शुरू करता है क्यों उपशम श्रेणी यानी दोबारा उपशम श्रेणी जल्दी शुरू होती है क्षपक श्रेणी से क्यों होती है कारण क्या है
हमने देखा था कि वो जीव उतरता है
छठे तक तो आएगा ही हजारों बार छठा जाता होगा फिर या तो क्षपक श्रेणी चढ़ेगा या उपशम श्रेणी चढ़ेगा
आप जो ऐसा डायरेक्ट ऊपर चढ़ाते हैं
डायरेक्ट तो ऊपर जाता ही नहीं शायिक भी होगा तो भी द्वितीय उपशम वाला होगा तो दोबारा द्वितीय उपशम करना पड़ता है परंतु शायिक होगा हाँ तो दोनों के लिए कोई भी श्रेणी चढ़ सकता है तो हम विशुद्धि के साथ उपशम श्रेणी चढ़ता है ऐसा कहना है उनका तो क्षपक श्रेणी का काल कम है इसीलिए वो जल्दी अपगत वेदी हो जाएगा यही तो लेना है हमको अपगत वेदी जल्दी हो जाएगा लिया है क्या अच्छा देख रहा हूँ देखते हैं विशेष पहले विशेषार्थ पढ़ के फिर ऊपर आते हैं नपुंसक वेदी के पढ़ने के लिए पुरुष वेदी जीव उपशम श्रेणी पर चढ़कर उतरते समय यदि मरकर देव होते हैं तो भी पुरुष वेदी ही होते हैं और नहीं मरते तो भी पुरुष वेदी होते हैं यहाँ स्त्रीवेद और नपुंसक वेद के समान एक समय काल उपलब्ध नहीं होता ये तो बात घटित करते हैं किसमें वेदिनी नाम गोत्र में अतः इनमें वेदिनी नाम और गोत्र कर्म के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल अंतर्मूर्त कहा है उपशम श्रेणी पर चढ़ाकर उतारने के बाद पुनः अंतर्मूर्त काल के भीतर उपशम श्रेणी पर आरोहण करने से यह काल उपलब्ध होता है इन्हें उपशम श्रेणी जल्दी चढ़ सकता है ऐसा अपगत वेदी जीवों में उतरते समय अपगत वेद के अंतिम समय में चार घाती कर्मों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध संभव है अपगत वेदी में वो तो हमने पढ़ा नहीं पर भी विशेषत पूरा पढ़ लेते अभी क्योंकि अपगत वेदी और उनके लिए उत्कृष्ट वहीं पर होगा उस मार्गड़ा में उतरने के अंतिम समय में तथा वेदिनी आदि तीन कर्मों का क्षपक श्रेणी में अपने बंध के अंतिम समय में उत्कृष्ट अनुभाग बंध संभव है और अपगत वेद का जघन्य काल एक समय उपशम श्रेणी की अपेक्षा और नौवे दसवें गुणस्थान काल की अपेक्षा उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है इसलिए अपगत वेद में सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा है शेष कथन सुगम अब ऊपर का रह गया था ना हमारा हमने पुरुष वेदी में देखा स्त्री वेदी में तो उत्कृष्ट काल के लिए सौ पल्ले पृथत्व का और यहाँ उत्कृष्ट काल सौ सागर पृथत्व करना नपुंसक वेदी जीवों में काय योगी जीवों के समान बन गए वो तो मूल में अनंत काल होता है उसका तो उत्कृष्ट बंधक किया उसने ज्ञानावरण आदि चार का, और अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल होगा अनंत काल, और बाकी वेदिनी नाम गोत्र का उत्कृष्ट का तो एक समय घटित होगा है ना, क्षपक श्रेणी में नपुंसक वेद के अंतिम समय में, उसका अनुत्कृष्ट का भी एक समय घटित होगा श्रीवेदी के समान, और उत्कृष्ट तो हमने देखा अनंत काल। अपगत वेदी जीवों में हमने इसका विशेषार्थ पढ़ा था भी, सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, उसमें सात कर्मों का उत्कृष्ट लेना है तो चार घाती कर्मों का तो उतरते समय अंतिम समय लेना अपगत वेद का, वेदिनी नाम गोत्र के लिए शपक चढ़ते समय अंतिम समय, तो दोनों में अंतिम समय एक ही समय घटित होता है। एक एक समय वाले, और अनुत्कृष्ट बंध का जघन्य काल एक समय है अपगत वेदी में, मरने की अपेक्षा हम कहेंगे अनुभाग बंद किया और मर गया, या उतरते समय उतरते समय नहीं चढ़ते समय अपगत वेदी होते ही एक समय मर गया, और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, या ऐसा भी लेना ना दसवें में आ गया उतरते समय लेना है तो बंद नहीं था, दसवें में आते ही अनुत्कृष्ट ही बंद हुआ, और फिर मर गए तो वो सवेद वाला हो गया तो मारगणा पलट गए एक समय में, तो एक समय के लिए अनुत्कृष्ट हुआ। कल मेरी बात चढ़ते समय एक समय में मरे या उतरते समय दसवें में आते ही एक समय में मर गए, एक समय हुआ, और उत्कृष्ट काल तो अंतर्मूर्त क्योंकि अवगत वेद का ही काल अंतर्मूर्त है। इसी प्रकार सूक्ष्म सांप्रायिक संयत जीवों के छह कर्मों का काल जानना चाहिए। ये छह क्यों कहे लक्ष्मी जी? हाँ मोहनीय लोभ का बंधन नहीं होगा, विशेषार्थ तो अभी हमने पढ़ा था पूरा ही, कौन सा लिया था? नहीं नहीं पूरा ही पढ़ा था, शुरू से सब पढ़ा था, फिर पढ़ना है क्या? हमने देखा ना वो मरकर देव ही देव होते पुरुष वेदी रहते इसलिए उसमें एक समय नहीं घटित होता। अब क्रोधादि चार कषाय वाले कषाय मार्गना, क्रोधादि चार कषाय वाले जीव में चार घाती कर्मों का भंग मनोयोगी जीवों के समान है। अभी घाती कर्मों का उत्कृष्ट तो संगी पंचेन्द्रिय मिथ्या दृष्टि तीव्र संक्लेश वाला जो है एक या दो समय, अभी क्रोधादि चार कषाय वाले हैं तो लगातार अनुत्कृष्ट करता रहे, अनुत्कृष्ट का एक समय भी घटित होगा, और मैक्सिमम कितना होगा? एक इंद्रिय में, कौन किस में रहेगा, क्रोध में कि मान में? अपना अपना, जैसे योग में हमने अंतर्मूर्त देखा, यहाँ तो कषाय पलटेगी तो अंतर्मूर्त लेना होगा, इसलिए मनोयोगी के समान कहा उन्होंने, यानी कषाय का काल एक अंतर्मूर्त। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, यानी श्रेणी में क्षपक में अपने अपने कषाय का अंतिम समय ले, अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है, और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त, वो भी क्योंकि कषाय का काल ही अंतर्मूर्त। विशेषार्थ क्रोधादि चार कषाय वाले जीवों में वेदनीय नाम और गोत्र कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग बंध क्षपक श्रेणी में होता है, अन्यत्र इनका निरंतर अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध होता रहता है, किंतु चारों कषायों का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है ये क्रोधमान माया लोक का, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय, चारों कषाय का उत्कृष्ट अनुभव बंद का जगत में उत्कृष्ट का चार अच्छा अच्छा नाम गोत्र के मुझे लगा कि हाँ इनके उत्कृष्ट अनुभव बंद का है वेदिनी नाम गोत्र के जगन्य उत्कृष्ट काल एक समय तथा अनुत्कृष्ट अनुभव बंद का जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा है शेष कथन सुगम एक ख्याल में एक बात विभंग ज्ञानी जीवों में अब ये विभंग ज्ञानी के गुणस्थान मंजू पहला दूसरा और उसमें उत्कृष्ट अनुभव बंद चार घाती का एक या दो समय संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि करेगा ओग के समान अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागर है लक्ष्मी जी कुछ कम क्यों कहा हाँ पर्याप्त होने के पश्चात होता है विभंग ज्ञान जो है पर्याप्ति प्राप्त होने के बाद होता है इसलिए कुछ कम कह दिया यानी उसने उत्कृष्ट बंद किया ही नहीं थ्रू आउट अनुत्कृष्ट ही किया अब विभंग ज्ञानी में ही वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है कब होगा अश्विन भाई ना बोलो हाँ विभंग ज्ञानी हाँ सात्विक के सन्मुख विभंग ज्ञानी वेदिनी नाम गोत्र का अभी गोत्र का अलग ले लो उत्कृष्ट अनुभाग है ना जगन जी ने उत्कृष्ट की बात है यानी जहाँ विशुद्धि ज्यादा है वहाँ इसका उत्कृष्ट अनुभाग बंद होगा संयम के सम्मुख वाला मनुष्य लेना निकाल के देखते हम स्वामी संयम के सम्मुख विभंग ज्ञान अवस्था में उसको अंतिम समय देखा क्या हाँ उत्कृष्ट के लिए जगन जी अभी हमने शुरू ही नहीं किया काल के लिए जगन्य लिखे परंतु जगन्य अनुभव की बात तो हम बाद में देखेंगे हाँ। अनुत्कृष्ट का बंद ज्ञानावरण के समान है यानी ज्ञानावरण के समय यानी एक समय से लेकर कुछ कम 33 सक है अनुत्कृष्ट का एक समय घटित करो अश्विन भाई उत्कृष्ट तो अंतिम समय में होता है विभंग ज्ञान हाँ वही तो मनुष्य तिरंशो में विभंग ज्ञान अंतर्मूर्त एक समय से लेकर अंतर्मूर्त होता है विभंग ज्ञान मनुष्य तिरंशों के लिए एक समय के लिए हो सकता है और अधिक से अधिक वो तो कुछ अंतर्मूर्त रहता है तो हाँ उदार शरीर की परिशातन कृति ऐसा कुछ आया था उसका अर्थ नहीं ख्याल में आया अधिक से अधिक अंतर्मूर्त मनुष्य तिरंशों में अधिक अंतर्मूर्त टिकता है क्योंकि दो बार आयु का बंध भी नहीं हो सकता उसमें ये बात हमने देखी थी मनुष्यों के विभंग ज्ञान के काल में दो बार आयु का बंध नहीं हो सकता यानी इतना बड़ा अंतर्मूर्त नहीं है वो नहीं आया ना पर केवल ज्ञानी ने जाना है बस इतना ही है वो जीव उस विभंग ज्ञानी से कुछ जानने का कार्य तो नहीं करेगा अभी हम कौन सी मार्गना देख रहे थे? विभंग ज्ञान है ना, स्वामित्व में मैं बताना चाहती थी। मत्या ज्ञानी शुद्धा ज्ञानी 23 पेज पर है ना, 23 नहीं 22 पेज पर। ये कहाँ देख रहे? जगन्य देख रहे क्या? जगन्य देख रहे उत्कृष्ट 13 पेज, मत्य ज्ञानी श्रुता ज्ञानी। वेदिनी नाम गोत्र का कौन है? संयम के अभिमुख सर्व विशुद्ध। मिला आपको 32 नंबर का पॉइंट, चौथी लाइन। विभंग ज्ञानी में अभी इसी का विशेष है। विशेषात पढ़ते 32 पृष्ठ। जो मिथ्यादृष्टि मनुष्य संयम के अभिमुख और सर्व विशुद्ध होता है, उसके अंतिम उत्कृष्ट अनुभाग बंद के समय वेदिनी नाम और गोत्र कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग बंद होता है, अन्यत्र इसके अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद होता है। इसलिए इन तीन कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंद का जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। यहाँ लिखा है देखो, तथा विभंग ज्ञान का जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 आगर। हाँ नरक वाला ये एक समय तो मनुष्य 3 इंचों में होगा। और मनुष्य 3 इंचों में हमने ये भी देखा था कि वो अंतर्मूर्त तक ही टिकेगा, ज्यादा नहीं, दोबारा फिर हो सकता है एट ए टाइम। ये बहुत बार आई थी बात, अपनी हमने इस पर चर्चा भी की थी। अब ये जो 33 अगर वगैरह नारकीय और देवों के तो वो तो कंटिन्यूस रहेगा, वो आयु बंध के बारे में हमने जब उसका अंतर वगैरह ये बातें देखी थी ना स्थिति बंध के प्रकरण में, उसका वक्तव्य या उसके इसका अल्पवतर है, उसका अंतर कितना हो सकता है। देव और नारकी में तो हमने अंतर मूर से लेकर 6 महीने कुछ कम लिखा था। हाँ परंतु मनुष्य 3 इंच, देवायु और नरकायु कौन मान देगा? तो मनुष्य 3 इंच होगा। तो विभंग ज्ञानी में देवायु का बंद करने वाले के आयु के अवक्तव्य का अंतर नहीं है कहा था। उस पर से हमने क्या डिराइव किया? उनका विभंग ज्ञान अंतर मुहूर्त तक ही टिकेगा, अधिक काल तक नहीं टिकेगा, यानी उसके अंदर दो बार अपकर्ष काल नहीं आ सकते। ये बात वहां अपने डिराइव हुई थी। एक समय के लिए होता है, बस इतना ही लेना है। वहाँ उन्होंने उसका डिस्क्रिप्शन ऐसा लिखा है, परिशातन कृति, औदारिक शरीर की परिशातन कृति। परिशातन यानी जो ग्रहण होता है शरीर के परमाणु और छोड़ता है, उसके लिए वो परिशातन कृति में शब्द आता है। पर उसका विभंग ज्ञान का क्या संबंध है वो वहां क्लियर नहीं हुआ था। हाँ देखो, ये विभंग ज्ञान का हमने विशेषात पढ़ रहे थे। विभंग ज्ञान का जगन काल एक समय उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 आगर। इससे सात कर्मों के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 अगर कहा है। क्या 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 उदय की बात? हाँ आप ज्ञान की बात कर रहे हैं क्या? बंद की कर रहे हैं? हाँ विभंग ज्ञान की। हाँ हाँ एक समय के लिए देशघाती का उदय हुआ, फिर सर्वग्रंथि का शुरू हुआ। यानी विभंग ज्ञान नष्ट हुआ ना एक समय में, वो इसीलिए बता रहे हैं। हमने ये भी देखा था बारहवें गुण स्थान के अंतिम समय में किसी को अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है।
एक समय
तो फिर का केवल ज्ञान हो गया उनको। हुआ है उनको, उससे वो बाहर देखना चाहिए क्या कंडीशन कहाँ है उसकी। विभंग ने अवधि ज्ञान कहा है? नहीं नहीं नहीं, वहाँ तो विभंग ज्ञान की बात चल रही है, और बारहवें गुण स्थान में प्रकट हुए वहाँ तो कोई देखने का तो बाहर तो विकल्प ही नहीं उनके। हाँ आगे आगे, अभी निबोधिक ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी और अवधि ज्ञानी जीवों में अभी समय दृष्टि है। सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अभी सात कर्मों में उल्टा पुल्टा लेना, घाती कर्मों का उत्कृष्ट कब होगा मंजू? मिथ्यात्व के संदर्भ मैंने क्या कहा, उल्टा पुल्टा ले लो, घाती कर्मों का मिथ्यात्व के संदर्भ, और नाम वेदिनी नाम गोत्र का शपक दस्व गुण स्थान। परंतु उसका एक समय घटित हुआ ना, दोनों का एक समय घटित है उत्कृष्ट अनुभाग बंध। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल अंतर्मूल, जो सम्यक्त्व का जघन्य काल लेंगे हम, और उत्कृष्ट काल साधिक छासर सागर है। इसी प्रकार अवधि दर्शनी सम्यक दृष्टि और वेदक सम्यक दृष्टि जीवों के जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि वेदक सम्यक दृष्टि जीवों में अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का उत्कृष्ट काल पूरा छासर सागर है। क्षायिक हो जाएगा विशेषार्थ, जो असंयत सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व के अभिमुख होता है और अंतिम समय में उत्कृष्ट अनुभाग बंध करता है, उसके इन तीन सम्यक ज्ञानों में चार घाती कर्मों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध होता है तथा वेदिनी आदि तीन कर्मों का शपक श्रेणी में बंध के अंतिम समय में उत्कृष्ट अनुभाग बंध होता है। इसलिए उक्त सातों कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक सागर सॉरी एक समय का है। नीचे की लाइन में चली गई तथा इन तीनों ज्ञानों का जघन्य काल अंतर्मूर्त है। ये मार्गणा का जघन्य काल ही अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक छासर सागर है। इसलिए इनमें उक्त सातों कर्मों के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक छासर सागर का है। यह प्ररूपणा सम्य दृष्टि और वेदक सम्य दृष्टि जीवों में अविकल घटित हो जाती है। इसलिए इन मार्गणाओं में भी पूर्वोक्त प्रकार से ही काल कहा है, किंतु इतना विशेष समझना चाहिए कि वेदक सम्यक्त्व का उत्कृष्ट काल पूरा छासर सागर ही है, क्योंकि वो तो क्षायिक हो जाता है ना इस अपेक्षा से, और उसके अंतिम समय तक उसको वेदक सम्यक दृष्टि कहेंगे हम, भले वो कृतकृत्य वेदक भी क्यों न हो। इसलिए उसमें उक्त सातों कर्मों के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का उत्कृष्ट काल छासर सागर ही होता है। मात्र सम्यक दृष्टि कहेंगे तो साधिक कहेंगे, मात्र सम्यक दृष्टि कहा तो, क्योंकि पहले उपशम था, फिर वेदक हुआ, फिर क्षायिक हुआ, फिर सम्यक दृष्टि तो रहा, तो उसको साधिक में लिया। मन पर्य ज्ञानी जीवों में वो क्षायिक होने के पश्चात वाला कांड है। मन परे ज्ञानी जीवों में सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अभी इनमें भी लेना, तीन सॉरी ये जो चार घाती कर्म है उसका उत्कृष्ट असंयम के सन्मुख, वेदिनी नाम गोर्त का उत्कृष्ट शपक के होगा, अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है, मरण की अपेक्षा होगा श्रेणी में, बंध नहीं था उपशम श्रेणी उतर के आए एक समय में मरण हुआ, अनुत्कृष्ट बंद किया था ना वहां पर, वो सभी सातों कर्मों का अनुत्कृष्ट होता है वहां पर, उपशम श्रेणी उतरने में एक समय में मरण, दसवें में एक समय में मरण, उनका मन परिज्ञान नहीं रहेगा देव में जाएंगे तो। वैसे हमने अभिनिबोधि ज्ञानी वगैरह उसमें तो नहीं घटित कर रहे थे क्योंकि वहां तो जगन्य काल अंतर्मुख उत्कृष्ट छादी छासठ सागर लिया, यहां तो एक समय भी घटित होगा और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्व कोटि है, ये मन परे ज्ञान का उत्कृष्ट काल, मनुष्य का एक ही बहु लेना। इसी प्रकार संयत सामायिक संयत और छेदोपस्थापना संयत जीवों के जानना चाहिए, ये जो कुछ कम एक पूर्व कोटि सब में घटित होगा। परिहार विशुद्धि संयत जीवों में सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, हाँ सामयिक छेदोपस्थापना के सम्मुख है वो चार घाती कर्मों का उत्कृष्ट, वेदिनी नाम गोत्र का उत्कृष्ट वो तो सातवें अप्रमत्त में सर्व विशुद्ध लेना, अभी वो उसको नाम मत देना। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्व कोटि है, क्योंकि परिहार विशुद्धि भी अंतर्मूर्त के लिए रही और फिर मान लेते श्रेणी मान ली, उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्व कोटि है, ये कुछ कम में कितना कम करेंगे अश्विन भाई, हाँ 38 साल नहीं नहीं परिहार विशुद्धि में,
परिहार विशुद्धि की बात,
क्योंकि 30 वर्ष सुखी जीवन बिताया फिर 8 वर्ष में तो उन्होंने मुनिपद धारण किया, प्रत्याख्यान पूर्व का अभ्यास किया, तब जाके परिहार विशुद्धि उत्पन्न हुई और अधिक से अधिक वो पूरा भौतक रही, तो कुछ कम में 38 वर्ष कम करने पड़ेंगे। अथवा कहेंगे नहीं 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 वे अलग अलग मार्गणा बता रहे, ज्ञान मार्गणा में मन परिज्ञानी को लिया और संयम मार्गणा में अभी परिहार विशुद्धि वाले को ले रहे, अथवा कहकर दूसरी बात बता रहे, वेदिनी नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है, परिहार विशुद्धि में जो एक समय बताया
ये तो स्वस्थल में कहां पे भी हो सकता है ना विशुद्धि के कारण,
हाँ यानी एक समय दो समय जहां घटित करते हुए ऑर्डिनरी ले लेंगे, हाँ यानी उनकी विशुद्धि ज्यादा है ऐसा लिया ना, और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल वही है, हाँ कुछ कम पूर्व एक पूर्व को इसी प्रकार संहिता से जीवों के जानना चाहिए। इसमें भी उत्कृष्ट बंध कब होगा? संयम के सन्मुख वाले को नवेदिनी नाम गोत्र का उत्कृष्ट होगा, और चार घाती का उत्कृष्ट किसके होगा? मिथ्यात्व के सन्मुख वाले होगा, परंतु उसका एक समय घटित होगा। अनुत्कृष्ट अनुभव बंध का जगन ने कहा ये हो गया। चक्षु दर्शनी जीवों में त्रस पर्याप्त जीवों के समान बन गए। चक्षु दर्शनी कहने से चतुरेन्द्र पंच इंद्रिय सब आ गए, तो त्रस पर्याप्त पर उनकी जो काय स्थिति है वो अनुत्कृष्ट के लिए वहां ले लिया। इतना विशेषात पढ़ लेते हैं। परिहार विशुद्धि संयत जीवों में वेदिनी नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभव बंध का काल दो प्रकार से बतलाया है। प्रथम तो चार घाती कर्मों के समान ही इनका काल है, फिर प्रकारांतर से इनका काल दूसरा कहा है। इस भेद का कारण क्या है यह विचारणीय है। विदित होता है कि सर्व विशुद्ध अप्रमत्त संयत के इनका उत्कृष्ट अनुभव बंध मानने पर इसका जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय उपलब्ध होता है, और दर्शन मुख की क्षपणा वाले सर्व विशुद्ध अप्रमत्त संयत के अंतिम उत्कृष्ट अनुभाग बंध के होने पर जब इनका उत्कृष्ट अनुभाग बंध माना जाता है, तब इनके उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय उपलब्ध होता है। इसी प्रकार प्रथम विकल्प की अपेक्षा इनके अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय और दूसरे विकल्प की अपेक्षा अंतर्मूर्त घटित कर लेना चाहिए। जघन्य के कैसे लिया उन्होंने? रेगुलर यानी मरण भी नहीं लिया उसमें उन्होंने, रेगुलर दो समय के बीच में अनुकृष्ट एक समय घटित किया।
उसका तो दोनों में एक ही समय बताया,
दोनों का एक ही बताया।
हाँ। पर पहले में एक या दो
कारण अलग अलग बताया उसका,
ये तो अंतर्मुख दृष्टि लिए बताया।
दूसरे विकल्प की अपेक्षा अंतर्मूर्त घटित कर लेना चाहिए।
तो वहाँ पे क्या अंतर्मूर्त
समान अनुभव? नहीं, वो तो समान अनुभव बंद की बात ही नहीं है। अनुत्कृष्ट के लिए अंतर्मूर्त बताए, उत्कृष्ट के लिए नहीं। उत्कृष्ट का तो जघन्य और उत्कृष्ट एक ही समय दिया है। ना ना अंतर्मूर्त लिया ना उन्होंने, सदा देता